जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदा नंदन व्रज जनरंजन, यशोदा नंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदा नंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सीताई गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल नीताई गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय ओम विष्णु।
कृपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टौतर शत श्री श्रीमत इज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की इथाई गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां प्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद नौवा भगवान रामचंद्र की लीलाएं अध्याय दसवा श्लोक क्रमांक 23 एवं शिपन्धनुषि संधितमुत्ससर्जः बाणं स वज्रमिव तद्रुतदं विभेद सौ सोग्वमदशमुखैरन्त्यपतद्विमाना दाहीति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः एवं शिपन्धनुषि संधितमुत्ससर्ज बाणं स वज्रमिव तद्हृदयं विभेद सो सुग्वमदशमुखैर्तपतद्विद्माना ताहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः एवं शिपन्धनुषि संजितमुत्ससर्ज बाणं स वज्रमिव तद्हृदयं विभेद सोऽश्रुगवं दशमुखैर् न्यपतद्विमानाम् द्वाहेति जल्पति जनै सुकृतीव रिक्तः अब अनुवाद और तात्पर्य इज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान वेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय क्या हो गया, क्योंकि रावण अपने दसों मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। तात्पर्य, भगवद्गीता अध्याय 9 श्लोक 21 में कहा गया है, क्षणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। जब पुण्यों के फल चुक जाते हैं तो स्वर्ग का भोग करने वाले पुनः पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इस जगत के सकाम कर्मक ऐसे हैं कि कोई चाहे पुण्य करे या पाप, उसे इसी संसार के भीतर भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहना होता है, क्योंकि पाप या पुण्य के द्वारा बारंबार जन्म मृत्यु की माया के चंगुल से छुटा नहीं जा सकता। रावण को किसी तरह समस्त ऐश्वर्यों से युक्त महान साम्राज्य का राजपथ मिल गया था, किंतु सीता देवी का अपहरण जैसा पाप करने के कारण उसने सारे पुण्य कर्मों के फल विनष्ट हो गए। यदि कोई किसी महापुरुष का, विशेष रूप से भगवान का अपमान करता है तो वह निस्संदेह अत्यंत अधम हो जाता है और अपने पुण्यकर्मों के फल से विहीन होकर रावण तथा अन्य राक्षसों की भांति नीचे गिर जाता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि मनुष्य पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठे हुए समस्त उपाधियों से रहित शुद्ध अवस्था में रहे, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब कोई मनुष्य भक्ति में स्थिर हो जाता है तो वह भौतिक स्तर से ऊपर चला जाता है। भौतिक स्तर पर उच्च तथा निम्न दशाएँ होती है, किंतु भौतिक स्तर से ऊपर होने पर मनुष्य आध्यात्मिक स्थिति में सदैव स्थिर रहता है। सगुणान समति तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। रावण या उस जैसे अन्य लोग भले ही इस भौतिक संसार में शक्तिशाली एवं ऐश्वर्यशाली हो, किंतु उनके पद सुरक्षित नहीं, क्योंकि अंततः वे अपने कर्मफलों से बंधे रहते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेणा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रकृति के नियमों के पूर्णता अधीन है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत मोहग्रस्त जीव अपने को उन सारे कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। किसी को न तो अपने उच्च स्थान का घमंड होना चाहिए और न ही अपने को प्रकृति के नियम से स्वतंत्र मानकर रावण की तरह कर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण। अनुवाद फिर से एक बार पढ़ता हूं। इस प्रकार रावण को धिक्कारने के बाद भगवान रामचंद्र ने अपने धनुष पर बाण साधा और रावण को निशाना बनाकर बाण छोड़ा, जो रावण के हृदय में वज्र के समान वेद गया। इसे देखकर रावण के अनुयायी आर्तनाद करते हुए चिल्लाए, हाय हाय क्या हो गया, क्योंकि रावण अपने दसों मुखों से रक्त वमन करता हुआ अपने विमान से उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है। हरे कृष्ण। तो अनुवाद में ये जो आखिरी का वाक्य है, उसी तरह नीचे गिर पड़ा जिस प्रकार कोई पुण्यात्मा अपने पुण्यों के चुक जाने पर स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरता है, मतलब केवल रावण ही नहीं, हम सब की तुलना रावण के साथ की गई है। हम अगर पुण्य करके कितना भी ऊपर ब्रह्मलोक तक गए, स्वर्गलोक तक गए, तो फिर भी इस भौतिक संसार में आकर गिर सकते हैं। तो आपको पता है किस प्रकार रावण, उसके पास सोने की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन जिसके पास भगवान नहीं है उसके पास सब कुछ होकर भी उसको ऐसा लगता है कि और कुछ पाना है। और इस काम से, इस वासना से, इस इच्छा से और ज़्यादा 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 कमाने की, अपने पास ज़्यादा कुछ रखने की इच्छा करता है, तो ये रावण की वृत्ति है। जो भगवान ने जो दिया है उसमें समाधान ही नहीं है। तो रावण इस ये काम का प्रतिनिधित्व करता है, लस्ट। तो इसके पास सब कुछ है, मंदोदरी जैसी धार्मिक पत्नी भी है, फिर भी जब अपनी बहन शूर्पणखा से सुनता है सीता का सुंदर शरीर का वर्णन, तब उसे देखा भी नहीं फिर भी उसको पाने की इच्छा करता है। ध्यायते विषयान पुंसान, ध्यान शुरू हो जाता है तो इस चेन का अंत कहाँ हो जाएगा? भ्रमित हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा और आसक्ति बढ़ेगी। ये सब रावण के बारे में होता है। तो उसको चैन नहीं लगती है अपने श्रीलंका में इतना सब कुछ होकर भी। तो केवल सीता को प्राप्त करने के लिए वो दंडकारण्य आ जाता है और वेश बदल कर आ जाता है, साधु के वेश में आ जाता है। क्योंकि साधु का वेश जो है ये आसानी से किसी को भी फंसा देता है। अब इंजीनियर का ड्रेस बनोगे तो लोग क्वालिफिकेशन देते हैं या नहीं ऐसे इंजीनियर। डॉक्टर का ड्रेस पहनोगे तो तुरंत पकड़े जाओगे आप डॉक्टर है या नहीं। उसी जो वकील का ड्रेस हो तो पकड़े जाओगे आप, आपको ला मालूम होना चाहिए। तो लेकिन साधु का ड्रेस कोई भी पहन सकता है कलयुग में, खास करके कोई पूछता ही नहीं कि किसी को साधु क्या है पता ही नहीं। तो रावण है, रावण इस प्रकार खास करके स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए साधु का ड्रेस ये रावण ने पहना है। ये सीता धार्मिक है तो उसको अगर अपने रावण के दशग्रीव 10 सरों के साथ जाकर खड़ा रहेंगे तो सीता पहचान लेगी, वो बाहर ही नहीं आएगी। अगर वही रावण अगर साधु बन के आता है तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यार ये रावण है। तो जो भगवान के भक्त नहीं है ये ऐसे दशग्रीव साधु है कलयुग में, तो इससे संभाल के रहना चाहिए। क्योंकि हमारा भी अंतकरण कैसा है? सीता मतलब भक्त है। तो ऐसे बाहर के कपड़े के ऊपर हम आकर्षित न होकर उसके गुण को देखना चाहिए। वैदिक संस्कृति में केवल पहराव देखकर, उसकी शरीर यष्टि को देखकर, उसका ज्ञान भी देखकर कोई प्रभावित नहीं होता है। कि ज्ञान भी हो सकता है लेकिन गुण को देखकर प्रभावित होते हैं। ये वैदिक संस्कृति है, गुण को देखना है। क्योंकि गुण जो है ये अलंकार है व्यक्ति के, और इस गुण को देखकर हम आकर्षित होना चाहिए। ना कपड़े, ज्ञान, ये सब एक्सटर्नल, ये सब बाह्य है। तो जब रावण जब सामने आ गया तो स्वाभाविक भाव से सीता ने उसको भिक्षा दी। तो आपको पता है किस प्रकार से रावण ने उसको लक्ष्मण रेखा से बाहर लाया और उसको पकड़ के आकाश मार्ग से जाने लगा। तो लेकिन वैष्णव आचार्य कहते हैं कि वो जो सीता नहीं थी, जो रावण चाहता था, वो सीता नहीं थी, वो सीता का माया रूप था। रावण को क्या लगा कि मुझे सीता मिल गई, लेकिन सीता तो विरधिरी थी, वो भूमि की पुत्री है तो भूमि में गई। और रावण को ऐसा लगा कि अभी मेरे पास सीता है। तो ये केवल रावण के साथ ऐसा होता नहीं, हम सबके साथ ऐसा होता है। हम समझ रहे हैं कि हम भोग रहे हैं लेकिन वो माया है, भगवान भोगता है। हम भगवत गीता क्लास में एकदम बेसिक उदाहरण देते हैं लेकिन ये बहुत अच्छा है सब लेकिन के लिए। अगर हम गुलाब जामुन अभी खाएं तो कैसे खाते हैं? मुख से खाते हैं, पेट में जाता है, आगे की क्रिया होती है। तो ये शरीर खा रहा है, तो वही गुलाब जामुन अगर हम मृत शरीर के मुख में रख दे तो खाएगा? खाएगा नहीं खाएगा। तो कौन खाता है? ये शरीर खाता है क्या? आत्मा तो खाता है क्या? आत्मा को हम दिख भी नहीं सकते तो गुलाब जामुन कैसे खाएगा? तो कौन खा रहा है? शरीर भी नहीं खा रहा है, आत्मा भी नहीं खा रहा है, तो कौन खा रहा है? ये विचार करने योग्य है या नहीं? क्योंकि जिस शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं कि ये मैं भोग रहा हूं भोग रहा हूं भोग रहा हूं, इस गुलाब जाम से हम देख सकते हैं कि मुंह पर पड़ा हुआ है, मृत होने के बाद ये शरीर उसका आगे की क्रिया नहीं होती है, अंदर नहीं जाता है, पेट में नहीं जाता है, तो ये शरीर नहीं खा रहा है। तो आत्मा, ये तो आत्मा राम है, उसको कोई भौतिक चीज की जरूरत नहीं। तो यही हम सब इस ऐसे ही रावण जैसे चंगुल में फंस जाते हैं। हम समझते हैं कि हम गुलाब जाम भोग रहे हैं, लेकिन वो गुलाब जाम है ही नहीं, क्योंकि शरीर को भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये भगवद गीता का श्लोक बहुत कंफ्यूजिंग है, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा उत्तम, सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्व खलविदम ब्रह्म, तो हम किधर रह गए? है ही नहीं, किधर, जीरो हो गए, है ना, है कि नहीं? अरे आप वैष्णव ना तो बोलो कम से कम। अभी हाँ बोल रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे। जीरो नहीं हो गए हम, आत्मा है, इस भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। जो हमारे साथ शरीर भी है उससे भी कुछ लेना देना नहीं है, इतना इसका इस आत्मा का क्या है। तो आत्मा सोच रहा है, बस यही है। जैसे रावण सोच रहा है कि मैं सीता को लेके जा रहा हूं, ऐसे हम भी सोच रहे हैं एक गुलाब जाम मैं खा रहा हूं, सोच रहे हैं, हो नहीं रहा है, शरीर को जरूरत नहीं, आत्मा को भी जरूरत नहीं, केवल सोच रहे हैं। तो देखिए, इस सोचने में हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। ये खाली ये गुलाब जाम का उदाहरण है, ऐसे सब कृत्य हमारे जीवन में हम करते हैं कि ना शरीर के लिए, देखिए शरीर के लिए क्या जरूरत है, ना आहार की जरूरत है, ना निद्रा की जरूरत है, ना मैथुन की जरूरत है, ना किसी का भय है, क्योंकि ये आत्मा तो शरीर तो काटा जाने के बाद, मृत्यु के बाद हम देख सकते हैं उसको, तलवार से पूरे दो टुकड़े करो उसको कुछ नहीं होता है। तो मतलब कैसे भगवान के ये माया है। कभी हम बचपन में जब थे, हम कभी मूवी जाते थे तो कभी अमिताभ बच्चन फाइटिंग कर रहे तो बाजू वाला भी ऐसा ऐसा करेगा, हा? हा? तो वो पूरा अमिताभ बच्चन हो जाता है, हा? ऐसा धक्का मारने लगता है। सो कबड्डी खेलता है तो कभी कबड्डी उड़ी कर जा रहा है, ये भी ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो उसी प्रकार हम ये भौतिक प्रकृति में इतने सम्मिलित हो गए हैं कि उससे हम उस प्रकृति के ही समझते हैं। प्रकृति, भौतिक प्रकृति जैसे हमें नचाती है वैसे हम नचाते जाते हैं, प्रकृति एक क्रियमाणा नहीं। तो इस प्रकार ये रावण है, तो हम भी कलयुग में, हम भी हमारी रावण की भावना ही है, जो भोग नहीं सकते उसको हम समझ रहे भोग रहे हैं। तो उसमें क्या महत्वपूर्ण है, किस भावना से आप गुलाब जाम को खा रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। अगर प्रसाद के रूप में उसका सेवन कर रहे हैं तो क्या हो जाता है, हमारा आत्मा की शुद्धि हो जाती है। अगर गुलाब जाम के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये बंधन बढ़ते जा रहा है, ये सिंपल है। तो रावण ने सीता को उठा लेके गए तो उसको समझा कि अभी मैं इसको भोगूंगा। तो बाद में राम और लक्ष्मण जब आ गए, उन्होंने देखा कि सीता नहीं है, तो विरह में जैसे भगवान की कृष्ण लीला में सब गोपियां जाती हैं पेड़ को पूछने के लिए, बेलियों को पूछने के लिए, लताओं को पूछने के लिए, फूल के लिए पूछने के लिए, नदियों को पूछने के लिए कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, यहाँ पर राम वही कर रहे हैं। और सब बेलियों को, लताओं को, वृक्ष को, फल को, फूल को, सबको पूछ रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। तो ऐसे करते करते वो जब आते हैं जटायु के पास, और जटायु जो कि रावण से युद्ध करते हुए हार गया और सीता को बचा नहीं पाया और नीचे जमीन पे गिर गया, और वो राम आने की राह देख रहा था। तो राम भगवान जब आ गए तो तुरंत उन्होंने बताया कि सीता इस दक्षिण मार्ग पे चली गई है और ये रावण ने उसको चुरा लिया है। तो बाह्य दृष्टि से अगर हम देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जटायु जो है ये भक्ति में फेल हो गया कि रावण ने उसको मारा। लेकिन क्या सही है रावण ने उसको मारा, वो तो भगवान की सेवा में लगा था।
और भगवान की सेवा जो उसके मन में थी, जो उसकी इच्छा थी कि सीता को बचाना, अगर वो नहीं कर पाया, कम से कम राम को ये तो बताया, ये सीता दक्षिण मार्ग में चली गई है, रावण उसको लेके गया है, तो ये भी सेवा हो गई। और सेवा करते करते अंत काले च मामेव, और राम का भी स्मरण कर रहा है। तो बाह्य दृष्टि से देखा जाएगा ये फेल हो गया, ये सीता को रोक नहीं सका या रावण को हरा नहीं सका, तो बाह्य दृष्टि से फेल है, लेकिन भगवान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काम किया, जो कि पूरे जंगल में घूमते घूमते हुए हृदय में करुणा है और आंखों में आंसू है, ऐसे पूरे जंगल में घूम रहे हैं दंडकारण्य से लेकर और जटायु मिलने तक, लेकिन ये सबसे बड़ी सेवा की कि सीता कहाँ है। तो एक बार प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में जयानंद प्रभु बहुत बड़ा रथ कार्ड बना रहे थे जगन्नाथ के रथ यात्रा के लिए, और रथ यात्रा के पहले ही दिन पूरा रथ जो है कोलैप्स हो गया। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या हमारे हृदय में कुछ भी भक्ति नहीं है? हम समझ सकते हैं कि प्योर डिवोटीज नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, कुछ भी भक्ति नहीं है, हम इतने भक्ति से लगाव से प्रेम से इतना रथ को खड़ा किया तो ये रथ गिर गया। प्रभुपाद ने कहा कि आपका भक्ति ठीक है, योर डिवोशन इज परफेक्ट, बट योर इंजीनियरिंग इज रॉन्ग। तो हमारे भक्ति में हमारी इच्छा सही है, इच्छा सही है, तो बाह्य दृष्टि से गलती हो सकती है। जैसे जटायु मर गया, भगवान की सेवा सेवा करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिया, तो भक्ति में कुछ गलती नहीं है, प्रकृति से जो होने वाला था हो गया, सबको तो एक दिन जाना ही है। तो ऐसे जटायु के भगवान के समक्ष उन्होंने देह त्याग किया, तो जटायु हारा नहीं, रावण जीत कर भी हार गया। वहां से वो ऐसा लगता है बाह्य दृष्टि से रावण जीता, जटायु को मारा, उसके पंख काट दिए और जमीन पे गिर गया और सीता को लेकर लंका में आ गया। लेकिन रावण को यह मालूम था कि मैंने उठा के तो लाया है, लेकिन सीता के इच्छा के विरुद्ध मैं उसका भोग नहीं ले सकता हूं, इसलिए उसको लंका, पूरे लंका का वर्णन किया, लंका दिखाया और कहा कि देखिए कहां आप जंगल में पड़ी हो, क्या खाती हो, कैसे कपड़े पहनती हो, इतनी सुंदर होकर मैं आपको ये सब कुछ देता हूं और आप खुशी से यहां रह जाओ, ये इतनी पत्नियां हैं, उस सब पत्नियों से मैं आपके ऊपर ज्यादा प्रेम करूंगा, ये सब पत्नियों को बोलता था रावण। तो ऐसे सीता को लाया तो जबरदस्ती नहीं कर सका, मंदोदरी और विभीषण इन दोनों को ये कृत्य जो है ये मान्य नहीं था, और इसलिए उनको सीता को अशोक वन में रखा। तो वहां पर सीता रही, तो रावण हर रोज जाके उसको मिलता था, उसका कि मैं आपको एक बरस दूंगा और एक बरस में आपका पूरा जो है उसको इतना गारंटी था अपने लंका के ऊपर, इस वैभव से सीता जरूर आकर्षित हो जाएगी, जरूर आकर्षित हो जाएगी। भी क्या होता है, जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसके बारे में कितना भी वर्णन करें ऐसा लगता है अच्छा है नहीं है, ऐसा लगता है कि हम आसक्त नहीं है, अगर उसी चीज के साथ एक बरस भर आप रह जाओगे तो आपको अपने आप आसक्ति आ जाएगी, नहीं है तो प्रभु जी हम अनासक्त है बोलने में आसान है, और नहीं है मुझे नहीं चाहिए नहीं चाहिए यार, और जब मिलती है फिर भी नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा होता है। और तीन महीने के बाद देखते हैं, छह महीने के बाद पकड़ते हैं और बरस के बाद गले लगाते हैं। तो ऐसे हमारे, तो रावण ने समझा ये भौतिक प्रकृति उसको बहुत, रावण जो है चतुर्वेदी है, चार वेद जानता था, जो भी चतुर्वेदी है यहां तो समझ लेना चाहिए, रावण के बंधु है। तो ये चारों वेद जानता था, तो क्या हो गया उसको, ये नहीं जान सका। ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की पार्षद है, उसको मैं नहीं भोग सकता हूं। लेकिन ये भ्रमित हो गया, जब भूल जाते हैं कि मैं भोग कर रहा हूं, तो पूरा ज्ञान जो है, क्या भगवद गीता में क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं भगवान के, अवृत्तम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्वैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरणा, वो नहीं है। ज्ञान जो है पूरे भगवान भूल जाता है, नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति का मैं ज्ञान हरण कर लेता है मन, हरंति प्रसभम मन, क्या उसका शुरुआत है, इंद्रियाणि प्रमातिनी हरंति प्रसभम मन, हरे कृष्णा। इंद्रियाणि, ये इंद्रिय इतनी प्रमाथी, इतनी प्रबल है, बुद्धिमान व्यक्ति को भी, देखिए सबसे बड़ा बुद्धिमान है रावण, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, चार वेदों को जानने वाला, लेकिन वो पहचान नहीं सका सीता और राम का रिलेशन क्या है, और उसको उठा के भोगने की इच्छा करता है। तो ज्ञान से भी कोई प्रभावित नहीं होते हैं रावण, इसको पता था, इसको स्वेच्छा से, क्योंकि पहले वो किसी रंभा से आकर्षित हो गया और उसको जबरदस्ती उसने भोग लिया, तो वहां पर उसका पति जो है नलकुबेर, उन्होंने उसको शाप दिया था कि अगर किसी स्त्री के मन के विरुद्ध आपने उससे संग किया, तेरे सर के सब टुकड़े हो जाएंगे। और उसको कितने सर थे, 10, मतलब कितने टुकड़े हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे, हरे कृष्णा। तो रावण को डर था, देखिए सब कुछ होकर भी ये डर है, ये तो सीता साधारण स्त्री है, लेकिन ये शाप देखिए कितना प्रभावी रहता है, इस शाप का प्रभाव है। तो उस शाप के प्रभाव से रावण सीता को छू नहीं सकता था। तो ऐसा 6-7 महीने होने हो गए, और तब इधर जटायु को वो बाद में पता कर देता है कि वहां जो है आगे मेरा भाई है संपत, और वहां जो है सुग्रीवा और जांबवान हनुमान जी उनको किष्किंधा में मिलते हैं, और वहां से वो आगे आते हैं, और वहां से सीता का जब पता चलता है तो स्पर्धा होती है कि कौन जाको शोध करेगा, कौन ढूंढ निकालेगा। तो जांबवान है, अंगद है, ये सब आते हैं, तो अपने अपनी क्षमता को कहते हैं। तो हनुमान भी बाद में खाली आखिरी अकुमा हनुमान जी है, तो उनको अपनी क्षमता से ज्यादा भगवान की कृपा के ऊपर विश्वास है कि हमारी क्षमता कितनी भी हो, अगर उसको भगवान की कृपा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी को जब वो छोटे थे उनको शाप दिया गया था देवताओं के द्वारा, ये बहुत गड़बड़ करता है, ये सूरज को पकड़ लिया मौसम्बी समझ के खाने के लिए गया, बोला आप भी ये बचपन में इतना कर रहा है तो आगे बड़ा होके क्या करेगा। तो उसको शाप दे दिया कि जब तक आपके इस सिद्धि की आपको कोई याद नहीं करा देगा तब तक ऐसे ही रहोगे। तो यहां पर जांबवान ने उसको याद करा दिया, भगवान ने याद करा दिया कि ये तो कितना 800 मील लंबा है, यहां आप कैसे जाएंगे, आप तो एक छलांग में जाना है और फिर वापस आना है, खाली एक ऐसा जम मर के नहीं है, ये ओलंपिक वालों को रिकॉर्ड मालूम नहीं है, वो समझते हैं कि 20 फुट कूदेगा तो मेरे को गोल्ड मेडल मिलता है, यहां से लेके साउथ इंडिया से लेके सीधा लंका में एक ही इसमें, और आसानी से गया क्या, नहीं, उनको बहुत राक्षसियों का सामना करना पड़ा, वो अलग विषय है, उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। तो आसान नहीं था हनुमान को अकेले जाना उधर और वापस आना, फिर भी हनुमान जी भगवान को संतुष्ट करना इसलिए छलांग मारकर चले गए, और वहां जाकर वो देख रहे थे, रामायण में वर्णन है हनुमान कैसा, ये ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी इसके लिए वो थोड़ा क्या हो गया, शाय, लज्जित हो गया, कि उसको क्या देखना पड़ रहा था कि सब लंका में ढूंढ रहा है वो, तो लंका में क्या रहा है, ये राक्षस का राज्य है, तो सब जगह वो देख रहा है कि राक्षस अपने पत्नियों के साथ रम्मान हो रहे हैं, ये ब्रह्मचारी देख रहा है आंखों से अपने, हरे कृष्णा। तो सोचिए उसका मन, हनुमान देख रहा है अरे मैं ब्रह्मचारी हूं, ये अच्छा नहीं है मेरे लिए देखना। तो वो सोच रहा है हनुमान क्या करें, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ऐसे स्त्री को इसमें इस संग करते हुए मुझे देखना नहीं चाहिए। बाद में बोलते हाँ मैं जिस काम के लिए आया हूं उस काम मेरे अगर मन में रहेगा तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा। तो देखिए हम अगर भगवान की सेवा को भूल गए तो बाकी सब दिखाई देता है, भगवान को सेवा को नहीं भूले तो हमारे सामने जो चल रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी इससे भाग है, हम भी इसमें से इससे जुड़े हुए हैं। तो तुरंत अपना मन उठा लिया आते मैं ब्रह्मचारी हूं, दिस इज नॉट गुड फॉर मी, इसे अंग्रेजी में नहीं सोचा उसकी बात में से, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो तुरंत इतना सब देखते हुए वो सीता को ढूंढ रहा था। इसलिए जो भी कुछ लंका का आकर्षण है, सोना है, स्त्रियां हैं, आभूषण है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, वहां पर आकर्षित बिल्कुल नहीं हुआ। तो बाद में आके अशोक वन में उसको सीता का पता चलता है, तो सीता वो अंगूठी देता है जो राम का भेंट दिया हुआ है, तो सीता तुरंत पहचान जाती है। तो बाद में वहां दोनों का बहुत संवाद होता है, तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना समुन्द्र पार करके, क्योंकि सीता ने देखा है रावण जब उसको उठा के लेके आ रहा था तो उसने देखा है कि इतना बड़ा समुन्द्र है, इसको पार करके किसी को संभावना ही नहीं आने की यहां। तो सीता तो बिल्कुल बस राम भरोसे, तो केवल राम ही मुझे बचा सकते हैं। तो ये हनुमान को देखकर उसको भी आश्चर्यचित हो गई, उसकी स्तुति करने लगी कि इतना कष्ट उठा के इतना कैसे आप आ गए। तो हनुमान भी कहते हैं कि ये बताने का अभी टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है, मैं खाली बस आपको ढूंढने के लिए आया था, बाद में आप वापस अयोध्या आओगे तो बहुत चर्चा करेंगे, अभी मैं आया हूं खाली आपको ढूंढने के लिए, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मैं जाकर राम को ये बताऊं कि सीता मुझे मिल गई, उसका ठिकाना मिल गया, वो कहां है। तो सीता ने भी उसको एक पीला मणि, जो हीरा है, जो उसके पिताजी ने, जनक ने विवाह के समय उसको दिया था, और उसको राम के पास दिया ये समझाने के लिए कि सीता उससे मिल गई है। तो हनुमान जी जा रहे थे, बाद में थोड़ा सोचा कि रावण को थोड़ा कुछ राम का एक बंदर का शक्ति दिखा के जाएंगे, राम के एक बंदर का शक्ति, तो पूरे लंका को आग लगा दिया। और बाद में सीता को कहा कि हम तुरंत आएंगे, यहां रावण डर गया, इतना सब लंका पूरा जल गया। तो यहां वापस आने के बाद ये सब जो है, ये मल्यावंत माउंटेन, मतलब ये पहाड़ पर खड़े हैं, सब देख रहे हैं। और जब हनुमान जब आ गए तो राम को देखकर जोर से हनुमान बोले, जय श्री राम,
जय श्री राम।
जब जय श्री राम का ललकार आकाश में से आ गया तो सब वानर, जंबवान, अंगद, राम, लक्ष्मण सब देखे, अरे हनुमान आ गया, हनुमान आ गया, और सब आनंद होके नाचने लगे, कूदने लगे। तो हनुमान नीचे आके सब कुछ, सीता कहाँ है, कैसी है, इसके लिए वो इसके बारे में वर्णन किया, तो राम के आंखों में आंसू आ गए, उसके हृदय में करुणा आ गई सीता के बारे में, कि कैसे ही कि पति का कर्तव्य होता है कि पत्नी की रक्षा करना किसी भी अवस्था में। रामायण में कहा गया कि एक पत्नी को बचाने के लिए इतना रामायण युद्ध हो गया, देखिए एक पत्नी को बचाने के लिए। तो केवल पत्नी का बचाना नहीं है, ये पत्नी के साथ साथ धर्म का भी बचाना है, जैसे कृष्ण और अर्जुन जो महाभारत में कर रहे हैं, ये केवल साधारण युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। उसी प्रकार धर्म से अधर्म से राम की पत्नी को छीन कर लेके चले गए रावण, इसलिए ये भी धर्म युद्ध है। तो ये सब बताया रावण ने, सीता ने दिया हुआ जो पीला हीरा है वो राम को दिया, उसको राम ने गले लगाया, ऐसा लगा कि सीता को ही गले लगा रहे हैं। अभी किसी प्रिय व्यक्ति को आप नहीं मिल सकते हैं, उससे अगर कोई भेंट आ गई तो आपको कैसा लगता है, उसके तुरंत आप अपने गले लगाते हैं यही समझकर कि वो वस्तु वही व्यक्ति है। उसी प्रकार राम ने भी उसको हाथ में पकड़कर अपने हृदय पे रखा। तो हनुमान ने वर्णन किया कि किस प्रकार से सीता को एक अशोक वन में रखा गया है और बहुत दुखी है, बहुत चिंतित है, बहुत क्रुष्ट हो गई है और आपके अलावा उसको दूसरा कुछ उसके मन में, हृदय में और मुख में नहीं है, केवल आपका ही चिंतन करती रहती है। तो बाद में तुरंत वहां पर हनुमान जब चला के चले गए सब लंका को, विभीषण जाकर राम को बोलते हैं, ये तो खाली क्या था, ट्रेलर था, ये राम का एक भक्त है तो उसने अकेले ने देखो क्या कर दिया। तो मेरे भाई सुनो मेरा, तो राम को भेज, सीता के पास, सीता को राम के पास भेज दो, इसमें ही आपका हित है। अगर नहीं सुनोगे, देखिए एक बंदर इतना कर सकता है, राम क्या करेगा। तो रावण बोलते, अरे मेरे घर में रहकर नमक हराम, मेरा ही नमक खा के मेरे को ही बता रहा है। तो उसको कहते हैं कि तू रावण को नहीं पहचानता है क्या, रावण का पता नहीं है क्या क्या वर उसको मिले हैं, सब अपने जो जो भी वर मिले हैं उसको बता देता है। तो विभीषण कहता है यही तो गलती है, इधर ही सब कुछ है, आपने ये नहीं मांगा मनुष्य और वानरों के हाथ से आपका वध नहीं होगा। तो राम ये मनुष्य रूप में है, भगवान है, लेकिन आपका संहार करने के लिए वो इस स्वरूप में आए हैं, अभी तो सुनो। तो फिर जहां अहंकार होता है वहां भगवान भी सामने खड़े रहे तो हम उसका नहीं सुनते हैं। ये दुर्योधन देखते हैं हम किस प्रकार से महाभारत में भगवान सामने खड़े हैं, तो जब अहंकार होता है तो सब हमारे सामने ज्ञान जो है खत्म हो जाता है, तो सही चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। तो विभीषण इतना बता रहे, तो विभीषण कहने लगा कि अगर आप मेरा नहीं सुनोगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो छोड़ के चले गए अपने चार मंत्रियों के साथ, वो कैसे छोड़ के चले आए। तो यहां आने के बाद अभी जांबवान देख रहा है ये विभीषण राक्षस आ रहा है, तो तुरंत राम को जाके बता दे इसको तुरंत आकाश में उसको मार डालो, ये राक्षस है, पता नहीं किस लिए आ रहा है। तो राम कहता है बोलो इतना थोड़ा भाई थोड़ा धीरज रखो, कम से कम उसको आने तो दो। तो इतने डरते हैं क्या, इतने सब हम हैं क्या करेगा अकेले। तो बाद में ऐसे सब लोगों की राय देते हैं, सब लोग कहते हैं उसको मारो, लेकिन हनुमान के साथ हनुमान को पूछते हैं अंत में, हनुमान बता दे कि नहीं, जब मैं वहां गया था लंका में, ये विभीषण और उसकी पत्नी है, इनका व्यवहार बहुत ही धार्मिक था और ये मैंने सुना है कि विभीषण रावण के इस कृत्य से विरोधी था और रावण उसका सुनता नहीं है, इसलिए शायद वो छोड़कर हमारे पास आया होगा, उसके आपको शरण देना चाहिए। तो राम ने तुरंत उसको गले लगाया और उसको शरणागति दी और कहा कि विभीषण क्या मेरे चरणों का कोई भी आश्रय लेगा, रावण भी अभी आकर मेरे चरणों का आश्रय लेगा तो उसको भी मैं अभयदान दूंगा, यही प्रभु रामचंद्र जी का वचन है। तो विभीषण वहां रह गए और तुरंत राम ने क्या किया, विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। अभी युद्ध करेंगे इसके लिए दो कारण मिल गए, अभी एक सीता भी है और दूसरा विभीषण भी है, तो अभी युद्ध करेंगे इसके लिए कि रावण जो अधर्म से राज्य कर रहा है उसको निकालकर धर्मशील राजा विभीषण को उस स्थान पर हम बिठाएंगे। तो ऐसे बाद में विभीषण भगवान ने पूछा कि अभी तो इतना बड़ा समुद्र है, इसको पार करके कैसे जाएंगे? तो विभीषण ने कहा कि आप समुद्र से विनंती करो। अभी देखिए, ये भगवान को समुद्र को विनंती करने की क्या जरूरत है, वो तो उसका नौकर है, उसका नौकर है। अरे हट जाओ, ऐसा करना चाहिए उसको, हट जाओ। तो फिर भी राम दिखाना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई अधिकार भी हो तो जिसको हमने अधिकार दिया है उसके ऊपर भी आक्रमण करना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कभी कभी, हम समाज में अधिकारी रहते हैं और हम उसको अधिकार देते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि उसको जाके हम ऐसे कहे तू कौन है, मैंने ही आपको बनाया है, ऐसा नहीं। कभी कभी हम किसी को भक्ति बनाते हैं, बाद में वो टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाता है और अंदर आने के लिए उसकी परवानगी लेनी पड़ती है। तो ऐसा होता है कभी कभी जीवन में। तो ऐसा ये अधिकार उसको है, भगवान को ये अधिकार है, फिर भी समुन्दर को प्रार्थना करते हैं। तीन दिन तीन रात कुश ग्रास पे बैठकर भगवान समुन्दर को प्रार्थना कर रहे हैं और समुन्दर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भी अहंकार से थोड़ा गर्वित हो गया। तो जो भगवान हमें देते हैं उससे हम अगर गर्वित हो जाएंगे तो भगवान को हम समझ नहीं पाते हैं। सब कुछ हमको मिल रहा है वो सब भगवान से मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है भगवान की सेवा के लिए मिल रहा है। तो उसको सेवा के बजाय उसके विरुद्ध ही हम क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो राम 3 दिन के बाद गुस्सा हो जाते हैं और कहा समुन्दर अपना जो धनुष बाण उठाते हैं और उस धनुष बाण और क्रोध रूप देखकर एकदम समुन्दर को पता चल जाता है ये तो आसान आदमी, ये सीधा सादा आदमी नहीं है, ये तो मेरे भगवान है। तो तुरंत जाकर भगवान के चरण पकड़ते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ करो, क्योंकि मुझे मेरे सामर्थ्य का अहंकार हो गया और आपको मैं पहचान नहीं पाया, और अभी मैं पहचान गया आप तो मेरे भगवान हो, आपका मैं एक शुद्र सेवक हूं, ये मेरी स्थिति को मैं भूल गया, तो मुझे क्षमा कीजिए और आपके चरणों पे मुझे आश्रय दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए समुन्दर, मैं आपको पार करके लंका जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां मेरी पत्नी सीता है तो उसको वापस लाना है और राम को थोड़ा सिखाना है। तो कहते हैं कि आप जो है ये विश्वकर्मा के पुत्र नल, वो एक्सपर्ट इंजीनियर है, वो खाली रास्ते पे ब्रिज नहीं बांधता है, वो समुन्द्र में बांध सकता है। हमारे यहाँ रास्ते ऊपर बांधने वाले लोग बहुत अहंकार हो जाता है, अरे हमने इतना बड़ा ब्रिज बांधा। कभी बम्बई में आप समुन्द्र में ब्रिज देखते हो तो क्या है, पानी के ऊपर है। तो पानी के ऊपर पानी की तरंगते हुए से कि 800 मील और 80 मील लंबा, 800 मील लंबा और चौड़ा, इतना बड़ा ब्रिज बांधने का है नल, और ज़्यादा टाइम नहीं है। तो नल के पास भगवान कहते हैं कि देखो भाई आपको ये करना है, भाई जरूर आपकी इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है, ये विश्वास चाहिए पहले, आपकी इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है, ये भक्त का लक्षण है। तो कहा है, हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा था, विथ ऑर्डर कम्स एम्पावरमेंट, मतलब जो गुरु आदेश देते हैं उसके साथ आदेश में शक्ति भी रहती है, तो हम उसको कितना स्वीकार करते हैं उसके ऊपर ये अवलंबित है। तो उस आदेश दे दिया कि आपको ये इतना लंबा क्या बनाना है, पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है। तो तुरंत सब लोगों को आज्ञा दी कि जैसे अपने अपने शक्ति के अनुसार आप जो जो मिलते हैं पत्थर पेड़ पहाड़ अपने अपने शक्ति के अनुसार सब लाइए, और अगर कुछ भी ताकत नहीं है तो लता वेल ये सब लाइए। तो तो जब सब लाए तो उसके ऊपर राम का नाम लग के उसको लताओं से बांधा, ऐसा बांधा कि सब पत्थर एक साथ रहे, नहीं तो क्या है वो फ्लोट होते हैं ना तो कहाँ भी भाग जाएंगे। तो उसको एक साथ रखा नल ने, उसको जैसे घास से या लताओं से उसको बांधा, एक दूसरे से ऐसा पिन किया और पूरा ऐसा ब्रिज बांधा। और ब्रिज बांधने के बाद क्या हो गया, ये सब भगवान का नाम लेकर लंका के द्वार पे आ गए। तो उस समय रावण ये एक अपने दरबार में एक मैजिशियन था, जादू करने वाला, उसको बुलाया और मेरे को ऐसा एक सर बना के दो बिल्कुल राम जैसा, ऐसा लगना चाहिए कि पूरा मैंने राम का ये मुख ही मैंने उसको काट के लाया है, तो शंका नहीं आनी चाहिए, ऐसा जीवित दिखना चाहिए। तो उसने एक बनाया और उसको लेकर रावण सीता के पास गया और सीता को बताया कि देखिए अभी एक बरस होने के लिए कुछ छोटा सा समय बच गया है, मैं आपको ये दिया था और मेरे सैन्य भेजकर राम को और सबको मैंने मार दिया है और वो अपने प्लेट में रखते हुए ऐसा कापड़ निकालते हैं तो राम का पूरा सर है वहां। तो सीता एकदम चकित हो जाती है, उसको दुख लगता है, रोने लगती है, सही लगता है उसको, लेकिन बाद में वो सोचती है कि ये हो ही नहीं सकता, राम को कोई भी मार नहीं सकता है। तो इसमें सीखने जैसा क्या है कि हमें आजकल के साइंटिस्ट लोग क्या बताते हैं, गॉड इज डेड, देखो गॉड इज डेड, उसका सर मैं काट के लाया हूं, गॉड इज डेड, इतना मैं कर रहा हूं, तो हम अचंभित हो जाएंगे लेकिन संशय नहीं आना चाहिए, गॉड इज नॉट डेड। जो सीता का संशय है उसके मन में नहीं है, थोड़ा विचलित हो जाती है, इतना बड़ा सब साइंस का एडवांसमेंट देंगे कौन नहीं अचंभित हो जाएगा, और उसके मुख से सुनेंगे हम गॉड इज डेड, वो दिखा भी रहा है। तो सीता जैसा भाव होना चाहिए कि संशय नहीं होना चाहिए, थोड़ा अचंभित हो जाएंगे, संशय नहीं आया उसको, बोला ये असंभव है। तो रावण ने उनको दिखाया अभी तो मेरी हो जाओ, अभी तो राम है ही नहीं, वो वापस नहीं आएगा। तो फिर भी सीता का ये विश्वास था कि कितना भी ये रावण ये करे तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर होना नहीं चाहिए, राम जरूर आएगा, एक ना एक दिन आएगा, ये विश्वास था। तो इस विश्वास से सीता वहां पर भगवान से अलग होकर रह रही थी। भगवान के अवतारों में सब प्रकार के रस रहते हैं, सभी अवतारों में सब प्रकार के रस रहते हैं, लेकिन कोई कोई अवतारों में उसमें से एकाधा रस जो है ये सबसे आगे आता है। तो ये विरह रस है जो राम और सीता के बीच में जो वृंदावन का भाव है, तो उसी भाव में सीता वो अशोक वन में रह रही थी। तो ऐसा होने के बाद रावण यहां पर आता है और अपने दो सैनिकों को भेज देता है और बोलता है कि जाओ देख के आ जाओ क्या क्या हो रहा है, गुप्तहेर को भेजता है। तो वहां पर जब आते हैं तो सब देख रहे हैं तो कोई उनको पहचानता नहीं है क्योंकि वो ऐसे बंदर के रूप में आते हैं, लेकिन विभीषण पकड़ लेता है, ये रावण के गुप्तहेर है, उसको राम के पास लेके जाता है, क्या करना है इससे, ये गुप्तहेर है, यहां पर देखने के लिए आए हैं कि क्या क्या है और युद्ध करने के लिए कैसी तैयारी करने के लिए चाहिए। तो राम बताए आप ही जाकर दिखाओ ना सब कुछ, हमारे क्या है, हमारे पास छुपाने जैसे कोई है ही नहीं, हमारे पास छुपाने जैसे क्या है, सब आपके दिखाओ कैसे कैसे ये सब कुछ है, दिखाओ उसको, जाके बताने दो रावण को, कम से कम उससे डर कर तो शरण आ जाएगा। तो विभीषण ने उसको दिखाया सब कुछ, ये ऐसा है, यहां से ये करेंगे वहां से करेंगे, ये हनुमान सबको बता दिया। तो वापस जाके बताया कि हम बचकर आ गए लेकिन आप नहीं बचोगे हम बच के आ गए क्योंकि हम चरण गए इसलिए राम ने हमको छोड़ा। वो दिखने में थोड़ा आपसे थोड़े कमजोर लगते हैं लेकिन एक एक व्यक्ति आपसे बड़ा बुद्धिमान है, तो फिर भी तो उसको कहते हैं, अरे तू मेरा गुप्त है या राम का है, सर उड़ा देगा तेरे को, चले भाग यहां से। तो उसको धमका के भाग दिया, भगा दिया। तो अंत में ये सब युद्ध करने के लिए आते हैं, पहले सब सैनियों को भेजता है, बाद में कुंभकर्ण को भेजता है, बाद में इंद्रजीत को भेजते हैं। तो ये तो एक से बड़ा एक से बड़ा एक है। तो यहाँ पर एक भक्तिचरण महाराज ने कुंभकर्ण के बारे में न्यू वृंदावन में एक बताया था, तो ये बताना जरूरी है हम सब लोग क्योंकि इस कौन में हैं। तो कुंभकर्ण को नींद खुल गई, तो कुंभकर्ण ने पूछा कि मेरे को तो इतना नींद का वरदान है, अधूरी रह जाएगी, इसका क्या होगा? तो कोट भाई भक्ति चौरू महाराज ऐसा बोले कि कुछ चिंता मत करो, कलयुग में प्रभुपाद आएंगे, इस्कॉन की क्या हो जाएगी, संस्थापना हो जाएगी, वहां भागवतम क्लास रहेंगे, वहां आपको बहुत काम रहेगा। तो कुंभकर्ण की बची हुई नींद है भागवतम में आती है। तो ये तो कुंभकर्ण को भी मारा, इंद्रजीत को मारा, इतना सब होके बाद में रावण आ गया। तो रावण सामने जब आ गया तो ऐसी वर्षा होता है बाण का वहां पर। तो रावण इतने बाण मारता है कि अंधेरा हो जाता है। इस अंधेरे में राम लक्ष्मण हनुमान जम्बवान सैन्य को कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना अंधकार हो जाता है, इतने अंधकार में। लेकिन राम पहचान लेते हैं और राम भी वैसे ही बाण को मारते हैं और सब बाणों को भेद कर लंका में अंधकार हो जाता है। इतना अंधकार हो, दोनों बाजू से युद्ध चल रहा है और मेरे पास 5 मिनट कम है, कल अनुत्तम प्रभु ने लिया है तो उसे मेरे लिए मेरा टाइम पे रखना है। तो उसके बाद ये श्लोक आता है, सामने एक दूसरे के सामने जब आते हैं, प्रभु रामचंद्र रावण को कहते हैं, तुम मानव भक्षियों में अत्यंत गर्हित हो, निस्संदेह तुम उनकी विष्ठा तुल्य हो, तुम कुत्ते के समान हो, क्योंकि यह घर के मालिक के न होने हुए पर रसोई के खाने की वस्तु चुरा लेता है। ये फिल्मी डायलॉग लगता है ना थोड़ा, कुत्ते के जैसा। हाँ तो फिल्म भी क्या है, वो भी तो इमिटेशन करता है भागवतम का या रामायण का और महाभारत का। तो जो जिस दुनिया में है वो सब इसमें है, भागवतम में। तुम कुत्ते की तरह हो, तो कुत्ता जैसे घर में मालिक न रहते हुए घर के अंदर जाता है और क्या करता है, रसोई घर में जाके खुद मालिक ने अपने लिए खाना बनाया उसको वो रोटी लेके भागा जाता है। कि तुमने मेरी अनुपस्थिति में पत्नी सीता देवी का अपहरण किया है, इसलिए जिस तरह यमराज पापी व्यक्तियों को दंड देता है उसी तरह मैं भी तुम्हें दंड दूंगा। तुम अत्यंत नीच पापी तथा निर्लज्ज हो, अतएव आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, क्योंकि मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। रामबाण उपाय। ये रामबाण यहां से आ गया, कभी भी खाली नहीं जाता है रामबाण। तो राम बाण मारने लगे, एक सर कट गया तो तुरंत धूम दूसरा आ गया, ऐसे ही 10 बार हो रहा है, एक गया तो दूसरा आ गया तो दूसरा आ गया, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें राधानाथ महाराज ने इसको कमेंट्री दिया था कि ये क्या है, जैसे अगर हम काम को काटते हैं तो क्रोध आ जाता है, क्रोध को काटे तो मच्छर आ जाता है, तो इसे एक एक करेगा तो दूसरा आता है। ऐसे हमारे हृदय में से ये सब 6 अनर्थ ऊपर आ रहे हैं, एक को काट रहे हैं तो 5 ऊपर आ रहे हैं, इसको काटा तो उसको पा रहे हैं। तो विभीषण को पूछता है कि रावण को कैसे मारना चाहिए, इसको तो मैं सर काट रहा हूं, मैं समझा कोई भी सर काटा तो मर जाता है, उसका किसी का गला काट दिया तो मर जाता है आदमी, इसको तो मर रहा नहीं रहा है, वो फिर से उसको फिर से एक आ रहा है, फिर से एक सर आ रहा है, फिर से एक सर आ रहा है, तो कैसे मारेगा इसको। तो ये कहते हैं कि इसका प्राण जो है अमृत इसके हृदय में है, और इस हृदय को आपके पास एक विशेष बाण है जो अगस्त्य मुनि ने आपको दिया है। ये साधारण बाण से मरने वाला नहीं है, ये अगस्त्य मुनि ने आपको बाण दिया है, उसका प्रयोग करो। और उसके हृदय पे मारो, रामबाण ऐसा बराबर हृदय में लगना चाहिए। तो इसलिए राम ऐसा क्रोधित होकर अपने बाण को क्या करते हैं, बराबर रावण के हृदय में मारते हैं। तो ये छह विकार कहां से आते हैं, ये हृदय से आते हैं। तो मूल पे जाना है हमें, ये छह विकारों का मूल क्या है, जहां पर हमें भोगने की इच्छा होती है, यह है हृदय। और यहां पर अगर राम बाण आएगा तो ही ये छह अनर्थ बाहर जा सकते हैं, जो भी छह अनर्थ बाहर जा सकते हैं। तो इसलिए ये राम बाण है, कलयुग में राम बाण कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये राम बाण उपाय है कलयुग में। तो हम रावण है मानो या न मानो, तो इस राम बाण से रावण जैसा व्यक्ति का अहंकार दूर हो गया, उसकी काम वासना दूर हो गई, तो ये भगवान के राम के बाण का शक्ति है। और बाद में रावण विमान पे से, रावण विमान पे से युद्ध कर रहा था, तो देवताओं को भी क्या हो गया, राम के बारे में चिंतित होने लगे, तो देवताओं ने राम को रथ दिया और ये ऊपर आकाश में हो रहा युद्ध, और जैसे यहां पर वर्णन करता है कि विमान से नीचे गिर गया। तो ऐसे राम की जब शुद्धि हो गई, रावण की शुद्धि हो गई राम के बाण से, तो हम भी इस कलयुग में हमारे में सब छह सब कुछ है, हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, उसके बाद रावण है, कुंभकर्ण है, शिशुपाल है, दंतवक्र है, और इन एडिशनल जगाई भी है मगाई भी है। तो ऐसे लोगों को क्या करे, तो ये रामबाण है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जय श्री राम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।